ये है मजदूरों का समाचार सारा जहां हमारा।
काम की स्थिति और शर्तों पर नया कोड। क्या कार्य सप्ताह में 4 या 6 दिन होने चाहिए? व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यों की स्थितियां और शर्त कोड 2020 उन 13 कानूनों को मिलाकर संशोधित करने के बाद लाया गया है जो अब तक प्रतिष्ठानों में काम करने की स्थितियों और शर्तों पर लागू होते थे। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने इस OSHW कोड 2020 के लिए मसौदा नियमों को अधिसूचित किया है ताकि काम के घंटे, वार्षिक छुट्टियां और पारिश्रमिक को विस्तार से सुनिश्चित किया जा सके। इस सिलसिले में हाल ही में मंत्रालय ने 4 दिन का कार्य सप्ताह भी प्रस्तावित किया था जिसमें हर रोज 12 घंटे काम करना शामिल होगा और कर्मचारियों को हर हफ्ते 3 भुगतान अवकाश दिवस मिलेंगे। धारा 25(1)(a) प्रतिदिन अनिवार्य कार्य समय के लिए 8 घंटे तय करती है। हालांकि इन मसौदा नियमों के नियम 28 के साथ यह लिखित धारा नियोक्ताओं को इन काम के घंटों को 12 घंटे तक बढ़ाने की गुंजाइश देता है। हर सप्ताह काम के अधिकतम 48 घंटे तय किए गए हैं और इस नए कोड के जरिए इसे सही ठहराया गया दिखता है। इसलिए अगर कोई नियोक्ता सप्ताह में 6 कार्य दिवस रखना चाहता है तो इसका मतलब यही है कि एक दिन में काम के 8 घंटे होंगे। अगर नियोक्ता सप्ताह में 4 कार्य दिवस की व्यवस्था करता है तो हर रोज काम के घंटे 12 होंगे। लेकिन अगर कोई नियोक्ता पारंपरिक 6 दिवसीय कार्य सप्ताह वाले प्रारूप के साथ रहना चाहे तो उस प्रारूप को चुन सकता है। इसके बावजूद ये नियम नियोक्ताओं को काम के घंटे को 12 घंटे तक बढ़ाने की आज़ादी देते हैं। इस अस्पष्टता को लेकर कोई अन्य मार्गदर्शन या स्पष्टीकरण नहीं होने के कारण विस्तार से समझने के लिए इस कोड और इन अनुपूरक नियमों को मिलाकर पढ़ने की ज़रूरत है। इसके अतिरिक्त भारत की श्रम शक्ति का एक बड़ा हिस्सा उन प्रतिष्ठानों में काम करता है जो कागज़ पर भले ही व्यवस्थित दिखते हों लेकिन धरातल पर अव्यवस्थित हैं। खासकर छोटे और मझोले प्रतिष्ठानों में आमतौर पर ओवरटाइम पारिश्रमिक के नियमों की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। अगर मान भी लें कि ज़्यादातर कर्मचारियों को अपने सेक्टर या उद्योग या उनके नियोक्ताओं की इच्छाओं के स्थापित मानदंडों पर कोई आपत्ति नहीं है लेकिन उन कर्मचारियों के एक छोटे वर्ग को तो अपने रोजगार खोने का डर सता ही सकता है जो काम के लंबे घंटों के बजाय छोटे कार्य सप्ताह की मांग करते रहे हैं। इस प्रस्तावित बदलाव में एक ऐसे उच्च शिक्षित और समझदार श्रमिकों की कल्पना की गई है जिसे अपने अधिकारों और सप्ताह में 4 कार्य दिवस प्रणाली के निहितार्थ की समझ है और इसके तहत यह मान लिया गया है कि ये श्रमिक ओवरटाइम मजदूरी या भुगतान वाले अवकाश दिवस की मांग करने में सक्षम होंगे। मारा जा रहा है प्लेटफॉर्म और गिग कर्मियों का हक। 24 फरवरी को यूरोपीय कमीशन ने एक परामर्श पत्र जारी किया ताकि प्लेटफॉर्म कर्मियों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए विमर्श की प्रक्रिया आरंभ हो सके। यह इत्तेफाक ही है कि पिछले हफ्ते उबर यूके के सर्वोच्च न्यायालय में अपना मुकदमा हार गई। इस ऐतिहासिक फैसले में कोर्ट ने कहा कि उबर चालक उबर कंपनी के कर्मचारी हैं न कि स्वतंत्र पेशेवर कर्मचारी जैसा कि उबर कंपनी दावा कर रही थी। इस कारण उबर को पिछले वेतन का भुगतान करना पड़ सकता है। विडंबना यह है कि जो उबरीकरण पहले गिग अर्थव्यवस्था मॉडल का पर्याय बन गया था आज वही मॉडल सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद बुरी तरह हिल गया है। यूके के सुप्रीम कोर्ट में हासिल की गई यह जीत केवल उबर चालकों की जीत न होकर समस्त गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म कर्मियों के लिए एक महत्वपूर्ण विजय है। गिग वर्कर्स में शामिल हैं डिलीवरी वर्कर, मैकेनिक के कामों से जुड़े सर्विस गिग वर्कर और अन्य विधिक कर्मी। प्लेटफॉर्म कर्मी मुख्य रूप से IT क्षेत्र के डिजिटल कर्मी होते हैं जो कोडिंग से लेकर डाटा एंट्री जैसे काम करते हैं। इसलिए इस फैसले का सभी गिग वर्कर्स पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा, यहाँ तक कि यूके के बाहर भी। 23 फरवरी 2021 को जारी विश्व श्रम संगठन की फ्लैगशिप रिपोर्ट द वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट 2021 डिजिटल प्लेटफॉर्म वर्कर्स के बारे में ही है। अमेजन फ्लेक्स नाम के एक गिग वर्कर डिलीवरी आर्म को हाल में फेडरल ट्रेड कमीशन को $6,20,00,000 अदा करने का आदेश मिला क्योंकि उसने कर्मचारियों को टिप्स न वितरित कर पैसा कंपनी के खाते में रख लिया था। इस फैसले में एक बात की स्वीकृति निहित है कि डिलीवरी वर्कर कंपनी के ही कर्मचारी हैं। इस फैसले के बाद US का संपूर्ण श्रम परिदृश्य उलट पुलट हो सकता है क्योंकि ILO के अनुसार 2017 में US में 5,50,00,000 गिग वर्कर थे यानी अमेरिका के पूरे वर्कफोर्स का 34% और अमेरिका ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैंडर्ड के प्रोजेक्शन के अनुसार अब यह 2020 तक 43% तक पहुंच गया होगा। यह भी महत्वपूर्ण बात है कि नए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने व्यक्तिगत वेबसाइट में कहा है कि गिग अर्थव्यवस्था कर्मचारियों की मालिकों द्वारा स्वतंत्र ठेकेदारों के रूप में गलत गणना इन श्रमिकों को उनके न्यायोचित लाभों और सुरक्षाओं से वंचित करता है। अपने चुनाव अभियान के दौरान उन्होंने वायदा किया था कि वे ऐसे न्यायिक कदम उठाएंगे जिनके माध्यम से इन्हें नियमित कर्मचारियों के बराबर वैधानिक अधिकार मिल सकेंगे। भारत में भी एक छोटी शुरुआत 1 फरवरी 2021 को हुई थी, जब निर्मला सीतारमण ने अपने केंद्रीय बजट में पेंशन की घोषणा कर गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में ला दिया था। कुछ माह पहले 15 नवंबर 2020 को जो सामाजिक सुरक्षा नियम 2020 निर्मित किए गए थे, ये संसद में सितंबर 2020 को संसद में पारित किए गए सामाजिक सुरक्षा कोड के तहत बनाए गए। इसके अनुसार सभी गिग वर्कर्स को श्रम मंत्रालय द्वारा चालू किए जाने वाले पोर्टल में पंजीकृत होना होगा और सभी गिग कंपनियों को गिग वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा की गारंटी करने के लिए सालाना एक राशि का भुगतान करना होगा, पर पेंशन की वास्तविक राशि के बारे में निर्णय राज्यों पर छोड़ दिया गया। ये नियम जल्द ही लागू किए जाएंगे। मीडिया की धारणा है कि मोदी सरकार इस मुद्दे पर सक्रिय है, जबकि संगठित ट्रेड यूनियन अपेक्षाकृत रूप से निष्क्रिय हैं।
तो दोस्तों, ये थे इस हफ्ते के चर्चित समाचार। अगर आप ये जानकारी अपने दोस्तों के साथ साझा करना चाहते हैं, तो अभी दबाएं नंबर 5। साथ ही अगर आपके पास श्रमिकों से जुड़ी कोई भी खबर, जानकारी या कोई अनुभव है, तो नंबर 3 दबाकर जरूर बताएं। शुक्रिया।